Sang Văn Thâm Cho Một Sâm Cha Maya Matram Navastutaha
Maya Matram Navastutaha
Shukti Prabodayo Sangha
Shukti Prabodayo Sangha
Mano Gati Mahatmadre
Atmano Gati Mahatmadre
अवस्था में अवस्था में प्रबोधयो चेतना अवस्था में संधो संधि अवस्था में आत्मना अपनी आत्मा में गतिम गति आत्मद्रे जो आत्मा को देख सकता है पश्यन देखने या समझने का प्रयास करते हुए बंधम जीवन की बद्ध अवस्था च तथा मोक्षम जीवन की मुक्त अवस्था च भी माया मात्रम मात्र मोह न नहीं वस्तुतः वास्तव में
तो
क्योंकि ये पांचवा श्लोक है, तो हम पहले पहला दूसरा लेके फिर पांचवे श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य बताएंगे। पहला श्लोक इस अध्याय का श्री नारद वाच अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। दूसरा श्लोक अनुवाद। सन्यास आश्रम के व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए और यदि आवश्यकता न हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडलू के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। तीसरा श्लोक। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे शांत तथा नारायण का अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। चौथा श्लोक। सन्यासी को चाहिए कि वह परब्रह्म का प्रत्येक वस्तु में व्याप्त देखे और प्रत्येक वस्तु को उनमें देखे जिसमें यह ब्रह्मांड भी है जो परब्रह्म पर टिका है। पांचवा श्लोक आज का अनुवाद और तात्पर्य से श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद अनुवाद। उसे सुप्त तथा जागृत अवस्था एवं इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मस्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र भ्रम है, वे वास्तविक नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। तात्पर्य। सुप्त अवस्था अज्ञान अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत रहता है। सुप्त तथा जागृत दोनों की मध्यावस्था में कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। अतएव जो व्यक्ति अपने को समझ सकता है उसे यह समझ लेना चाहिए कि अचेतन तथा चेतन मात्र भ्रम है, क्योंकि मूलतः इनका अस्तित्व नहीं होता। केवल परम सत्य का ही अस्तित्व है, जैसे कि भगवान ने भगवद गीता में 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में पुष्टि की है। मयात्म इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु कृष्ण के निराकार रूप के आधार पर विद्यमान रहती है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त भगवान को बिना भ्रम के सर्वत्र देख सकता है। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण परां सहगणादरिता श्री विशाखानंदं नमः विष्णुपराय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी आशाद्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेक्षा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौराणी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 आभारी हूँ कि आप यहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में सब भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए श्रीमद् भागवत का पठन करने। मीरा रोड में मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और ज़्यादा करके यहाँ डिवोटी जो दिखते हैं मुझे यहाँ पर ये सब काफ़ी सीनियर हैं मुझसे भी। मैं जब यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट था तभी यहाँ पर आता था और ये डिवोटीज मुझे बहुत प्रेम देते और उसके प्रेम से ही थोड़ा भक्ति आया है। तो भागवत पर यहाँ बैठकर उनके सामने लेक्चर देना एक सबसे मुझे लगता है कि आभासन के लिए सब जाना चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सेवा करना है यहाँ पर तो कल प्रसाद खा रहा है आज प्रसाद लूँगा यहाँ पर तो बिल भरना चाहिए कुछ। तो यहाँ पर थोड़ा श्रीमद् भागवत पर हम चर्चा करेंगे, कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा कर देना। यहाँ पर देख रहे हैं हम आज सातवें स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। सातवें स्कंद जो है इसमें प्रहलाद महाराज का जो वर्णन आता है और युधिष्ठिर महाराज ने अभी इतना सब सुनने के पश्चात प्रहलाद महाराज के दिव्य गुण नरसिंहदेव भगवान जैसे प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज की रक्षा की हिरण्यकश्यप का वध किया प्रहलाद महाराज के सुंदर प्रार्थनाएं ये सब होने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज की जो उत्कंठा है वो गई नहीं अभी तक। भगवान के बारे में जानने की जो उत्कंठा है उतनी इतनी ज़्यादा है युधिष्ठिर महाराज के लिए कि पूरा नरसिंहदेव की लीला हो गई है फिर भी उन्हें और चाहिए। उनके सामने कौन है? साक्षात नारद मुनि। जब नारद मुनि ऐसे महान महाभागवत जब आए हैं तो कैसा शॉर्टकट लिया जाए, जितना चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन ले लिया जाए भगवान के बारे में। तो सातवें स्कंद में पूरे नरसिंह लीला हो गई। अभी युधिष्ठिर महाराज पूछे नारद मुनि से किसके पहले कि आप चले जाए एक और एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो है कि आप मुझे वर्णाश्रम के बारे में ज्ञान दीजिए। और उसी ज्ञान को अब देख रहे हम तीन चार अध्याय से चल रहा है वर्णाश्रम के द्वारा। अब एक एक अध्याय में नारद मुनि ने ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और अभी अध्याय में नारद मुनि सन्यासी के बारे में जो उल्लेख बता रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे आचार्य गणों से जो पूर्वज भक्त हैं वे सब हमें ये सिखलाते हैं कि हमारा समय अधिकतर जो है भगवान के गुण को सुनने में लगना चाहिए। गायंती और श्रवण भी, श्रवण और कीर्तन होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज थके नहीं है, जब हम नए भक्त होते हैं तो हमारी आंख भागवतम पे होती है और बाद में भागवतम जब थोड़ा लेट हो जाता तो घड़ी होती है कि भागवतम कभी खत्म होगा, प्रसाद का वक्त हो जाएगा। ये तो नए जब नए भक्त होते थे, लेकिन हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पर इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे उदाहरण कि एक पूरा भागवतम सेक्शन हो गया है पूरा, लेकिन और मांग रहे और पूछ रहे। तो प्रभुपाद जी भी ये बताते रहे अपने जीवन में कि सबसे पहले जो है श्रवण और कीर्तन, उसको परफेक्ट करना चाहिए, बाकी सब चीज़ आएगा, सब कुछ आ जाएगा। एक बार प्रभुपाद अलीगढ़ गए थे और अलीगढ़ में टाइगर लॉक कंपनी के जो मालिक थे उनके घर में प्रभुपाद ने प्रवचन किया। तो प्रभुपाद जी हिंदी में प्रवचन कर रहे थे और उस समय वो टाइगर लॉक कंपनी जो व्यक्ति था मालिक बड़ा धनी व्यक्ति था, तो उन्होंने सब लोग बड़ा बुलाया था प्रभुपाद जी के लेक्चर में। और प्रभुपाद जी उस समय प्रभुपाद जी को पता चला कि उस समय की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने एक रूल बनाया था, बातें कम काम अधिक। तो प्रभुपाद जी ने सीधा अपना जो लेक्चर है कैसे चालू किया, सबको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बातें कम काम अधिक करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि काम कम बातें अधिक करना चाहिए। प्रभुपाद ने इतना जोर से बताया तो टाइगर लॉ कंपनी का जो मालिक था वो थोड़ा विचलित हो गया, क्योंकि श्रोतागण में दो तीन मंत्रीगण भी थे, प्रधानमंत्री के जो मंत्री थे वो भी से बैठे थे, तो चुपचाप जैसे आया और प्रभुपाद से बोलने लगे, प्रभुपाद जी मंत्री साहब बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी माइक में बोले, कहाँ है मंत्री साहब? और प्रभुपाद ने बोला, मंत्री जी ये क्या रॉन्ग है, गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि काम कम करना चाहिए और बातें कृष्ण कथा अधिक करना चाहिए। ये क्या हो रहा है, ज़्यादा बातें कृष्ण कथा कम हो गया है भारत में और लोग काम करने की जो है ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो प्रभुपाद इतने बोल्ड थे, इतने कि कहीं भी प्रभुपाद जो है दृढ़ता से प्रचार करते थे और सबको उन्हें बताया कि कैसे ऐसे युधिष्ठिर महाराज इतने उत्कंठित होकर नारद में सामने साक्षात आ गए, कोई भी चांस छोड़ने रहे, सब कुछ पूछ रहे उन्हें, पता नहीं कभी मिलेंगे। नारद मुनि जो है ये तो कोई इन्विटेशन से आते नहीं है, अचानक आ जाते हैं, महाभागवत है घूम फिरते आगे युधिष्ठिर महाराज के पास, तो पूरी तरह से जो है युधिष्ठिर महाराज उसका लाभ उठा रहे। तो इस चर्चा में देखते हैं हम कि पहले वर्णाश्रम की चर्चा हुई है और तत्पश्चात अभी संन्यास आश्रम का चर्चा हो रहा है, तो आज हम थोड़े अपने लेक्चर में पहले वर्णाश्रम के बारे में बताएंगे और फिर संन्यास आश्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो वर्णाश्रम धर्म है ये मानव कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसका जो है रचना किया। भगवद्गीता में चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शाम। ये चतुर्वर्ण जो है वर्ण और आश्रम, इसका जो है मैंने विश्लेषण किया है ताकि समाज को इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करके समाज को जो फायदा होगा, मनुष्य जीवन जो है सफल होगा। मनुष्य जीवन कभी सफल होता है जब हम वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में उतारते हैं। मनुष्य जन्म जब माता पिता से मिलता है वही काफ़ी नहीं है, वो तो जन्म हुआ है लेकिन संस्कार नहीं हुआ मनुष्य का। ऐसे एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आए और बोले, प्रभुपाद जी अभी मैं चार नियम जो है पालन कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ अभी आप मानव हैं क्योंकि आप चार नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी डिवोटी बनना है, अभी जप करना है, भक्तों का संग करना है। तो वर्णाश्रम धर्म है ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि कर किया जाए या नहीं किया जाए, ये कंपलसरी है। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए वर्णाश्रम धर्म आवश्यक है, लेकिन क्या होता है हम देखते हैं अक्सर लोगों को कुछ धर्म के बारे में बताएं तो लोग लगता है धर्म का मतलब है कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, लोग डर जाते हैं धर्म धर्म। जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर में कोई आते हैं और उनको बताया कि आप रेगुलरली आइए संडे कार्यक्रम में, सोचते नहीं मैं तो दर्शन के लिए आता हूँ, संडे कार्यक्रम थोड़ा नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो, तो मैं डर जाता हूँ। जैसे कल मैं यहाँ पर दोपहर को 12:30 बजे आया यहाँ पर, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ पर दीक्षा दे रहे थे, तो मुझे देखा था एक एक भक्त आ रहे हैं और बोल रहे माइक पे, मैं अंडा नहीं खाऊँगा, मांस नहीं खाऊँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, टीवी देखूँगा नहीं। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति नया व्यक्ति सुष्टि कॉम्प्लेक्स से शांति नगर या यहाँ से कोई आ गया दीक्षा के वक्त पहली बार आ रहा है
और क्या देख रहे हैं, सब लोग भिक्षा ले रहे हो, क्या बोले, ये नहीं खाऊंगा, ये तो मेरा जीवन है, इसको बंद कर दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। तो वो लोगों को लगता है कि जितना रूल्स एंड रेगुलेशंस विधि विधान हो उतना जो है दूर रखो। जिस संस्था में ज़्यादा कुछ बताया जाता नहीं है कि आप कुछ छोड़ो मत, बस आप रेगुलरली आया करो, तो लोगों को उस संस्था से जुड़ने की ज़्यादा जो है इच्छा होती है। लेकिन इस कौन संस्था में ये छोड़ो वो छोड़ो, कितना सारा चीज़ छोड़ना, चाय कॉफ़ी, वहाँ पर भारत देश में चाय कॉफ़ी छोड़ना यानी बहुत कठिन, सबसे कठिन चीज़ है। ऐसे बहुत सारे डिवोर्स अभी भी इस कौन में है जो सब कुछ छोड़ दिया लेकिन एक चाय छूट गई उनसे। जैसे हमारे मंदिर में एक डिवोर्स थे, वो 10 साल से जप कर रहे थे, सब कुछ फॉलो कर रहे थे लेकिन एक चाय। तो हमारे बाकी सब जो वरिष्ठ डिवोर्स थे भक्त, उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो बाद में सब कुछ छूट जाएगा, है भक्ति भी छूट जाएगा। तो आते गए लेकिन दीक्षा तो लेना है कभी ना कभी, चाय भी छूट नहीं रही। तो एक बार हमारे डिवोटी गौरंग गुरु, उन्होंने उन डिवोटी को इंट्रोड्यूस कराया, एक महाराज आए थे कविचंद्र महाराज हमारे मंदिर में, और उन्हें बताया कि ये प्रभु जी अच्छे डिवोटी हैं, बहुत एक ही प्रॉब्लम है इनकी चाय छूट नहीं रही। तो कविचंद्र महाराज बोले, आप लोग भारत के लोग जो है इतने चाय के प्रति आसक्त हैं, 10 साल तक तुम्हें चाय छोड़ा नहीं, मैं चैलेंज देता हूँ कि तुम कभी चाय छोड़ेगा। तो डिवोटी जब सुना कि मैं चाय को छोड़ूंगा नहीं, और महाराज ने चैलेंज दिया, तो अगले दिन चाय छोड़ दिया उसने। तो ये भारत देश है, यहाँ पर सब अलग चलता है। तो जो अच्छे नियम है, अच्छे कानून है, उसको फॉलो करने की लोगों की इच्छा नहीं है, तो छोड़ना पड़ेगा कुछ। तो वर्णाश्रम धर्म में जब व्यक्ति आता है तो बहुत सारे विधि विधान का फॉर्म को जो है फॉलो करना पड़ता है। लेकिन लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन है बंधन और भौतिक जीवन है फ्रीडम, जो चाहे करो। लेकिन बाहर का जीवन जो है वो तथाकथित जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्रता, लेकिन आध्यात्मिक जीवन है ये सही प्रकार से जो है स्वतंत्रता है। जैसे उदाहरण के रूप में जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो एक बार एक पिताजी पतंग उड़ा रहे थे और बच्चा जो है खिड़की लेके वो मांझा लपेट रहा था। तो उन्होंने पिताजी से पूछा, पिताजी आप ये जो पतंग को आप इतना बांध क्यों रहे हैं इस मांझे से, आपके बांधने के कारण पतंग उड़ नहीं रहा है, एक ही जगह पर स्थिर है, आप मांझा जो काट दीजिए, फिर पतंग जो अच्छे पूरे आसमान में उड़ते रहेगा और ऊपर उड़ेगा। तो पिताजी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पतंग को मैं बांधा हूँ मांझे से, इसीलिए पतंग जो है उड़ रहा है, तो गिर जाएगा। लेकिन बच्चे को समझा नहीं, तो पिताजी ने क्या किया, मांझा काट दिया। तो बच्चा खुश होकर ताली बजाने लगा कि भाई पतंग जो है उड़ रहा है, बहुत आगे जा रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहा है। लेकिन 15 मिनट के बाद जो पतंग फिर से जमीन में आकर गिर गया। तो उसी तरह श्राधा गिरधारी श्रीनाथ देव सुधरा महारानी की इच्छा, तो उसी तरह ये जीवन जो मनुष्य जीवन पतंग की तरह है, वो मांझा जो है लगता है कि वो मांझे से पतंग को बांधा जा रहा है, लेकिन मांझे से ही पतंग उड़ रहा है। जो व्यक्ति बालिक होता है, जो व्यक्ति छोटा बच्चे ऐसा होता है उसका दिमाग बुद्धि, उसे लगता है कि ये जो तथाकथित बंधन है, तो मनुष्य जीवन भी ऐसे ही है। जितना हम बंधन में अपने आप को आध्यात्मिक बंधन में जकड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, उससे क्या होगा, उतनी स्वतंत्रता हमें महसूस होगी। फुटबॉल जो होता है वो भी स्वतंत्र होता है, लेकिन क्या होता है, 22 प्लेयर के जो खिलाड़ी के मार खाने की स्वतंत्रता हो। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इससे व्यक्ति जब गुजरता है इस वर्णाश्रम धर्म से, तो उसे सही प्रकार से स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। हम देखते हैं कॉलेज कोचिंग जब करते हैं, हम लोग युवाओं को प्रचार करते हैं, तो जब युवा आता है भक्ति में तो बहुत खुश रहता है वो, लेकिन कुछ समय तक जब उसे एक मोड़ पे आ जाता है और उसे चूज करना पड़ता है, कभी गृहस्थ या ब्रह्मचारी, उस समय वो बहुत डर जाता है कि ये क्या हो गया। 3-4 साल अच्छा भक्ति किया, जब भी जाओ यात्रा में जाओ, जो भी मंदिर में जाना रह जाओ, प्रसाद लो, प्रचार करो, जो भी करना करो, लेकिन एक समय आ गया और अभी काउंसलर ने बोला चलो ठीक है, अभी वही भक्तों ने बोला कि अभी या तो गृहस्थ आश्रम में जाइए या ब्रह्मचारी आश्रम, तो डर जाता है, उसकी अवस्था बहुत विचलित हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चल के जब वो सही आश्रम में जाता है तो फिर वो एक अलग प्रकार का स्वतंत्रता वो महसूस करता है, क्योंकि अभी वर्णाश्रम में आ गया, वर्णाश्रम धर्म। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो है ये एक प्रकार का स्वतंत्रता है जो भगवान कृष्ण ने इस भौतिक बद्ध अवस्था में दिया है। श्री प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा उनके अंतिम दिनों में इस पृथ्वी पर कि मेरा 50% जो है काम हो गया है, मैं कृष्ण भावनामृत का जो है स्थापना किया है, लेकिन 50% मेरा काम अधूरा है, वो है देवी वर्णाश्रम की स्थापना। तो जो प्रभुपाद थे तो उस समय वर्णाश्रम था, लेकिन कैसा वर्णाश्रम था, तत्काल वर्णाश्रम था। प्रभुपाद के पास कोई भी आता, प्रभुपाद मैं परेशान हूँ मेरी पत्नी से, प्रभुपाद संन्यास के लिए प्रचार करो, और प्रभुपाद के पास संन्यास था, प्रभुपाद में संन्यास परेशान शादी करो, तो प्रभुपाद ने उस समय तत्काल वर्णाश्रम कर लोगों को एक तरह एक साथ रखा और भगवान की सेवा में लगाया। लेकिन वो तत्काल था, लेकिन जब प्रभुपाद छोड़ के चले गए तो सब लीडर ने देखा कि जो प्रभुपाद ने फॉलो किया उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे एक किताब में सत्यवरूप महाराज लिखते हैं कि जब सूरत में प्रभुपाद पहली बार आए तो उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ सूरत में, और सूरत के अखबारों में ऐसा बड़ा लेख है कि प्रभुपाद और उनके अमेरिकन शिष्यों ने पूरे विश्व में प्रचार किया है। सत्यवरूप महाराज लिखते अपने लेख में कि उस समय हमें लगा कि प्रभुपाद भी प्रचार कर रहे हैं और हम भी प्रचार कर रहे हैं, दोनों मिलकर प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद और उनके अमेरिकन शिष्यों ने पूरे विश्व भर में प्रचार किया। और सत्यवरूप महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद छोड़ गए तो जब उसी संस्था को चलाना था, एक प्रभुपाद ने चलाया, 108 मंदिर स्थापना किया 12 साल में, और उसके बाद मंदिर को मेंटेन करते करते हालत सबका खराब, सबकी अवस्था जो है दयनीय हो गई। तभी उनके विचार में आया कि प्रभुपाद जो है इन्होंने सबको चांस दिया कि आप भी क्रेडिट लो, लेकिन वस्तुतः प्रभुपाद ही सब कुछ कर रहे थे, वरना 12 साल में 108 मंदिर की स्थापना करना और उसमें डिवोटीज भरे हुए हैं, जगह नहीं है। हम सुनते प्रभुपाद शिष्यों के शिष्यों से, जब प्रभुपाद थे तो मंदिर में जगह नहीं था लोगों को रहने के लिए, मंदिर के बाहर सोते थे लोग बरामदे में, और आज हम देखते हैं इस्कॉन में हम कितना परिश्रम करें लोगों को। आइए संडे फीस में हम कमलोचन को बताते, हम कल बता रहे थे कि अगर भगवद गीता कोर्स करना है तो 50,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तब जाके 50 लोग आते, देखिए कठिन नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरा नेक्स्ट जो चीज़ है वो देवी वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम क्यों? क्योंकि देवी वर्णाश्रम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर इस्कॉन की संस्था की अवस्था जो बुरी हो जाएगी। जैसे गरम कानन महाराज एक बार बता रहे थे अपने प्रवचन में कि जब प्रभुपाद थे तो इस्कॉन का जो गार्डन था वो एकदम यूनिकली सब प्रकार से अच्छी तरह से जो है बढ़ रहा था। जब प्रभुपाद चले गए तो गार्डन जो है ना बढ़ने लगा, लेकिन गार्डन जैसे नहीं जंगल जैसे बढ़ने लगा। तो इसलिए कंट्रोल में लेके आने के लिए वर्णाश्रम देवी वर्णाश्रम बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद के वक्त सब लोग जो थे मंदिर में रहते थे, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी सब मंदिर में, सब लोग पुरुष शेव्ड हेड शिखा व्हाइट धोती कुर्ता या सैफ्रन धोती कुर्ता या सन्यासी वस्त्र और माताएं सब साड़ी में। लेकिन हम देखते हैं कलयुग जैसा बढ़ रहा है, हर प्रकार के डिवोट दिखते हैं, अभी सब धोती कुर्ता पहनते नहीं क्योंकि अभी मॉडर्न एज आ गया है। तो प्रभुपाद थे इसे सबको ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अभी आप बोलेंगे सबको ज्वाइन करेंगे तो कोई नहीं आएगा इस मंदिर में, तो बोलना पड़ रहा है कि ठीक है जहाँ पर भी रह रहे हैं आप भक्ति कीजिए, और ये नहीं कभी तो बोलना चाहिए ठीक है आप कैंटीन नहीं करें कोई बात नहीं मंदिर में आते रहिए भक्तों का संग कीजिए। तो लोगों को कहाँ से कहाँ के नीचे से उठाना पड़ता लोगों को। तो इसलिए दैवी वर्णाश्रम धर्म यानी फिर से वही ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, वही वर्णाश्रम जो कृष्ण भगवान ने बताया है चौथे अध्याय में। लेकिन उसमें थोड़ा अलग थोड़ा भेद यही है कि दैवी वर्णाश्रम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की आज्ञा का पालन। जैसे श्री प्रभुपाद बताते थे कि रशिया में कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म क्या बोलते हैं हिंदी में, साम्यवाद, और बता रहे कि ये साम्यवाद चलेगा नहीं, और प्रभुपाद बताते कि इस्कॉन में सही साम्यवाद है सही कम्युनिज्म। साम्यवाद का मतलब क्या है कि कोई मालिक नहीं, सब समान सब एक जैसे, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि रशिया में लोग हैं फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके साथ में नीचे भी लोग काम भी कर रहे हैं, तो एक मालिक है, नौकर भी है। प्रभुपाद कहाँ तक कहते हैं कि इस्कॉन संस्था में साम्यवाद सही प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर दैवी वर्णाश्रम है। यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, जो सेवा बोला है वो करते हैं। ऐसे यहाँ पर कोई अगर बड़ा इंचार्ज भी होगा, उसे अगर उनके गुरु महाराज ने बोला कि आज जो आप क्या कीजिए, प्रसाद माहौल को साफ कीजिए, वो जाके झाड़ू उठाएंगे और साफ करेगा। किसका सेवा है वो, नए रोड का सेवा है। लेकिन सेवा क्यों करेगा, क्योंकि वो दैवी वर्णाश्रम का आधार क्या है, गुरु की आज्ञा। तो आज प्रेसिडेंट है, लेकिन कल बोला कि जाके टॉयलेट साफ करो, टॉयलेट साफ करने और टॉयलेट साफ करने वाला तुम्हें कल प्रचार करो, प्रचार करना चाहिए। तो जो बोला है वो करना चाहिए, वो है दैवी वर्णाश्रम। तो इसीलिए सही रूप से दैवी वर्णाश्रम की स्थापना इसका जो है ये महत्वपूर्ण अंग है आज के इस्कॉन संस्था का। तो वर्णाश्रम के बाद हमारी अधिक चर्चा होगी संन्यास के बारे में, जो आज इसका जो यहाँ पर चर्चा हो रही है श्लोक में। बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ आई हूँ, संन्यास के बारे में बोलना है कठिन है। लेकिन हम देखते हैं कि भगवद गीता में अर्जुन पहले अध्याय में उनकी चर्चा में बताते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे युद्ध नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि युद्ध करने से, ये इतना बड़ा घोर युद्ध है, इससे से समस्याएं आएंगी। पहली समस्या ऐसी होगी कि मेरे सब जो स्वजन है, पितामह, मेरे बंधु और मेरे सब रिश्तेदार सब मारे जाएंगे, मुझे मारना पड़ेगा उनको। और दूसरा है कि इनको मारने के बाद मुझे जो है राज्य चलाना है, यानी पाप का राज्य चलाना है। तो अर्जुन को लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, मैं तो आपका डिवोटी हूँ कृष्णा, आपने ये कहाँ लेके आ गया, ये कहाँ पर मुझे मारना पड़ेगा अपने लोगों को, किसके लिए, थोड़े राज्य के लिए, मुझे तो राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो वन जाना है। तो अर्जुन के मन में विचार था कि मैं वन जाके संन्यास लूंगा। लेकिन हम देखते हैं भगवद गीता के तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में इतना विश्लेषण करके भगवान बता रहे उनको कि सही सन्यासी कौन है। सन्यासी का मतलब नहीं छोड़ के चलेगा, सन्यासी का मतलब है पहले क्वालिफाई होना है, बाद में छोड़ना है। छोड़ना सन्यास धर्म नहीं है, वो तो एक छोटा अंग है सन्यास का। सही सन्यास है डीप, पूरी तरह भगवान के प्रति आसक्त, सभी चराचर वस्तु इस तो सृष्टि में भगवान को देख रहे, तब जाके सन्यासी को टिक पाएगा। नहीं तो सन्यासी जाएगा तो थोड़े दिनों के बाद फिर से आ जाएगा। तो अर्जुन इसे क्या लगा कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ, मैं वन में आ सकता हूँ, क्योंकि अर्जुन को पहले से एक्सपीरियंस था, गुरुजन की कृपा से 13 साल वनवास करके आए थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये वनवास, वो वनवास अलग है और बाद का वनवास अलग है जो बात कर रहे थे। क्योंकि उस समय क्या था, उससे वनवास गए थे लेकिन सबको मालूम था 13 या 14 साल के बाद सच आना है, वो वेकेशन पीरियड था उनका। तो गए थे और वहाँ पर भी अर्जुन क्या कर रहे थे, सन्यासी का उनको रोल प्ले नहीं कर रहे थे, वो जाकर अपने अस्त्र शस्त्र को जो है अर्जन करने में लगे हुए थे, जुटे हुए थे। स्वर्ग लोग गए, शिव जी की उपासना की, पशुपात अस्त्र लिया उन्होंने। तो अर्जुन को लगा कि सन्यास इतना ईजी है, लेकिन भगवान जब तीसरे चौथे अध्याय में बताया सन्यासी का सही अर्थ क्या है, उनका मन नियंत्रित होना चाहिए, तो अर्जुन को पता चल गया कि जो ये सन्यास धर्म बहुत कठिन है। क्योंकि पहले पूरी तरह से इंद्रिय संयम कर तब जाके हम वन में आ सकते। तो जैसे अर्जुन को लगा कि मैं जो यहाँ कृष्ण का डिवोटी हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, पर अभी मुझे लोगों का जो हत्या करना पड़ेगा और एक राज्य के लिए, और तो राज्य सुख के लिए इतने सारे लोगों का हत्या करके जो है रक्तपात करूँगा मैं। तो जैसे अर्जुन की स्थिति है पहले अध्याय में, ऐसे बहुत सारे टाइम, बहुत समय एक साधक की भी स्थिति ऐसी होती है अर्जुन की तरह। साधक भी जब इस्कॉन सोसाइटी में आता है तो उसकी एक धारणा होती है, डिवोटी का मतलब क्या है। डिवोटी यानी जब करो, भजन करो, प्रसाद करो, लेकिन बाद में आगे बोलते हैं क्या सेवा कीजिए कुछ। तो सेवा करने के लिए उचित सेवा करने के लिए सब रेडी है, लेकिन कोई कभी कभी डिफिकल्ट सेवा मिलती है तो वो सेवा करते करते उसकी अवस्था अर्जुन से होती है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तो ये करना ही है। जैसे उदाहरण के रूप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने भेजे थे कभी डिवोटीज, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों से बात करना। और आमतौर भारत की जनता जो है वो एक तरह से बहुत शाय, बहुत शर्म आता है लोगों से, लोगों को चिल्ला कर, जैसे लोकल ट्रेन में लोग चिल्लाते ना कि कंपनी की ओर से पेन बांटा जा रहा है, पेन दिया जा रहा है, कोई लगता नहीं है, वो डिफिकल्ट है लोगों करना। तो ऐसे आपको बोल दिया जाओ प्रचार करो, जाके किताब बांटो, सबके सामने जाके चिल्लाना या बोलना कि किताब दीजिए, तो बहुत सारे डिप्यूटीज को बहुत कठिन होता है। जैसे मायावती में बोलते हैं आप लोग जाइए, सब जाइए, मंदिर खाली होना चाहिए, सब सब डिवोटीज कर्मचारी ग्रस्त स्टॉल पर खड़े रहिए और चिल्लाइए किताब लीजिए कम का कम कीमत में, तो कोई कोई डिवोटीज को धमसा नहीं हम सेवा करें। तो विचार आता है कि मैं कहाँ आऊँगी अभी, मैं तो भक्ति में आया, चैंटिंग करने आया, डांसिंग करने आया, ये सड़क पर खड़ा कर दिया मुझे, किताब लेके बेचो उसको, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रचार प्रचार भेज देती लेक्चर देने के लिए। कभी स्कूल में कोई माइक के समय खड़ा भी नहीं हुआ था और यहाँ पर भी सब बैठे और मैं अकेला बैठ कर लेक्चर दे रहा हूँ, कठिन चीज़ है वो। तो अलग अलग प्रकार की सेवा मिलती है तो लोगों को लगता है कि भक्तों को लगता है कोई नया भक्तों की कहाँ आ गया, मैं चैंटिंग करने आया, भगवान की सेवा करने आया, ये कहाँ लगा दिया, सबसे डिफिकल्ट सेवा दे दिया मुझे। तो समझना चाहिए कि हमें कि ये विषाद है, अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, कन्फ्यूजन। अर्जुन को लगा कि आध्यात्मिक जीवन है ऐसा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूरा जो है भगवद्गीता बता के बोले आध्यात्मिक जीवन नैरो नहीं है, छोटी नहीं है, एकदम छोटा रास्ता नहीं है, बड़ा है। और सही जो आध्यात्मिक जीवन है वो है अपने जो गुरु है या दीक्षा शिक्षा गुरु उनके मार्गदर्शन में सेवा करना। तो अर्जुन को पहले युद्ध नहीं करना था, गीता सिखाया भगवान ने और वही युद्ध अर्जुन ने कैसा किया, बहुत उत्साह से किया। तो उसी तरह सेवा करते वक्त हम देखते हैं कि ये चीज जीवन में हमें डिस्टर्ब कर सकती है, कि हमें जो नहीं चाहिए था वो मुझे करना पड़ रहा है। हमारा जैसे वृंदावन में प्रभुपाद ने जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन की स्थापना की, उनको एक छोटा जो है लैंड मिला, तो प्रभुपाद ने एक सन्यासी को बुलाया पाश्चात्य देश और उसे वहाँ पर बोला कि आप यहाँ पर रहिए। तो जो महाराज जब आ रहे थे सन्यासी वृंदावन में, तो उन्हें लगा कि वृंदावन जा रहा हो इतना अच्छा है, और प्रभुपाद ने उनको बुलाया और बोला कि अभी यहाँ पर रोज ट्रक में भर भर के सीमेंट के बैग आएंगे, आपका सेवा है उस सीमेंट के बैग को काउंट करना। उसको गेट उनको गेट पे बुला बुला दिया, डंडे के साथ बैठे गेट पे हो और क्या काउंट करे, दिन भर सीमेंट का बैग, एक दो, एक ट्रक में 50 आया, दूसरा ट्रक आया कितना आ गया, उसमें 50 आया, अरे उसमें 40 ही आया, झगड़ा करो कॉन्ट्रैक्टर से। तो 3-4 दिन के बाद परेशान हो गया, वृंदावन में आया क्यों, कृष्ण का नाम काउंट नहीं करो, सीमेंट का बैग काउंट कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी ने क्या सेवा में लगा दी, काउंटिंग सेवा। प्रभुपाद ने कहा वृंदावन में आके आप जो भगवान की सेवा करेंगे कभी भगवान दिखेंगे आपको, यमुना के तट पर आप कितना भी जप कीजिए नहीं मिलेंगे भगवान, तो भगवान जो है वो जब हम किसी गुरु के सेवा के द्वारा भगवान का हमें जो है एक्सपीरियंस हुआ। एक बार प्रभुपाद वृंदावन के पहले के दिनों में प्रातः भ्रमण करने गए, तो पहली बार जब प्रभुपाद निकले भ्रमण करने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए, तो सब डिवोटीज अगल बगल में सब एकदम स्थिर थे और सोचे प्रभुपाद क्या बताएंगे वृंदावन में, श्रीमती राधा रानी के बारे में बताएंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे, बलराम जी के बारे में बताएंगे, वृंदावन के बारे में कुछ तो बताएंगे प्रभुपाद। प्रभुपाद 15-20 मिनट तक चलते रहे, कुछ भी प्रभुपाद नहीं बोला, कुछ एक शब्द प्रभुपाद बोले नहीं। और थोड़े समय के बाद प्रभुपाद एक जगह देखा, उन्होंने कुछ तो छोटा पोस्टर था और प्रभुपाद एकदम मुस्कुराए और प्रभुपाद ने बोला सीमेंट, यानी प्रभुपाद बोले कि वृंदावन में सीमेंट मिलना बहुत कठिन है, देखो सीमेंट का इधर जो है एडवर्टाइजमेंट है, और प्रभुपाद ने बोला सीमेंट बैग हमें मिलना कठिन है, इस फोन नंबर पर फोन कीजिए और सीमेंट बैग मंगाइए। तो प्रभुपाद वृंदावन में है और प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं, सेवा के बारे में सोच रहे हैं। प्रभुपाद तो महाभागवत है, राधा रानी कृष्ण का, और वो सीमेंट प्रभुपाद को कुछ अलग लगेगा, क्योंकि वो सीमेंट किस लिए है, भगवान किस लिए। तो हम देखते हैं हमारे आचार्य द्वारा हमको सिखाया जाता है कि कैसे सेवा द्वारा भक्ति द्वारा जो हम सही से भक्ति करते हैं, वो जो भक्ति जो करना है वो डिफिकल्ट है, कभी ऐसे वर्णाश्रम ने बोला ना कि विधि विधान, विधि विधान करना बहुत कठिन होता है। मंगलारती में आइए, भागवत क्लास में आइए, प्रसाद ही लीजिए, भोग अर्पण करके प्रसाद लीजिए, ये सब कठिन होगा। लेकिन उसके द्वारा एक डिवोटी को आखिरी में उसके जीवन में स्वतंत्रता महसूस होती और वह भगवत धाम की प्राप्ति। तो इसलिए जैसे एक और एक अच्छा उदाहरण आता है, एक एक डिवोटी थे, वो आरएसएस से आए थे, तो आरएसएस छोड़ के इधर आए और यहाँ पर जब आए हमारे मंदिर में आए तभी उनको बताया गया कि आपकी पहली सेवा होगी किचन में जाइए और चपाती बनाइए। तो 6 महीने चपाती बना रहे थे, परेशान हो गए, बोले मैं तो यहाँ पर प्रचार करने आया हूँ और आप मुझे चपाती बनाने लगा रही 6 महीने, तो बोले मुझे जम नहीं रहा है। डॉक्टर ने कहा धीरे धीरे सब समय आने पर प्रचार भी करेंगे, लेकिन अभी आप सेवा कीजिए। तो 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना, 1 साल बाद परेशान हो गए, बोले बहुत अच्छा हो गया, अभी मुझे जो है शादी करना है। तो विवाह कर लिया उन्होंने, 3 साल के बाद आए, डिवोटी रहे कि 3 साल के बाद आए, रियलाइजेशन के साथ आए, पूरे साक्षात्कार, एक छोटा बच्चा हाथ में था और बोले प्रभु जी काश मैं चपाती बना था। बोले मेरी पत्नी को बहुत बैकेज है, वो चपाती नहीं बना सकती, भाई मुझे चपाती बनाना पड़ता। तो जो है श्रम करना जो है वो हमारा जो है मनुष्य जीवन में वो राइट है, करना चाहिए, श्रम से दूर भागना नहीं चाहिए। तो हमें जो इनिशियल स्टेज भक्ति में लगता है कि भक्ति का मतलब ऐसा ऐसा इस तरह से भक्ति होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अर्जुन भी कंफ्यूज था, भक्ति का मतलब नो फाइटिंग, लेकिन भगवान का फाइटिंग है भक्ति, तुम्हारे लिए फाइटिंग, जितना मारेगा उतना अच्छा। ऐसे चौथे अध्याय भगवान बोलते आचार्य, बस हमारे आचार्य ने बताते कि भगवान ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया तुम्हारा जो गांडीव है वो क्या है, जैसे यज्ञ करते हैं ना यज्ञ का जो स्पून है चम्मच वो आपका गांडीव है, और घी क्या है आपका जो एरो बोट जो आपका बाण वो घी है, और बोला कि जो अग्नि है यज्ञ की अग्नि वो क्या है कुरुसेना। तो अर्जुन भी चमकित हो गया कि इतना ऐसा कोई सुना नहीं यज्ञ का विश्लेषण कि फाइटिंग भी यज्ञ हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि अर्जुन को एक्सपीरियंस था पहले कि वन में रहने का, लेकिन बाद में भगवान ने बताया कि वन में रहना इतना इजी नहीं कठिन है। ऐसे कभी कभी हमारे डिवोटीज को जाते हैं यात्रा में वृंदावन मायापुर जाते हैं, तो उनको इतना अच्छा लगता है, उनको लगता है कि बॉम्बे छोड़ देना चाहिए, इधर ही रहना चाहिए, वृंदावन मायापुर कितना अच्छा है। 15 दिन वेकेशन में आएंगे तो वृंदावन मायापुर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई सेवा नहीं होगा, जब करना है हरि बोल भ्रमण करना है, लेकिन जब रहने जाएंगे वृंदावन मायापुर में तो ये पता चलेगा वृंदावन जो है उसका प्रकोप रूप दिखेगा आपको, मायापुर का प्रकोप रूप, सेवा करो वहाँ पर रहो। फेस्टिवल में सब हरि बोल सब डिवोटेड रहते हैं, फेस्टिवल चले गया तो भी रहता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है जो हमारे इंद्रियों का एक्सपीरियंस वो कभी कभी हमारी इंद्रिया हमें जो है फुसला सकती है, गलत राह में नहीं जाती क्या सकती है। इसलिए सन्यासी का मतलब है पहले वो सारे चर जगत में प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखना चाहिए। विद्या विनाय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्ते सुनी चय व स्वपा के पंडिता समदर्शन, सब वस्तु को एक तरह देखना चाहिए क्योंकि सब में भगवान है। अगर भगवान सबके हृदय में गए इसका मतलब वो आपकी इंपॉर्टेंट है, भले वो कुत्ता हो भगवान उसके हृदय में रह रहे तो कुत्ता भी इम्पोर्टेंट है। तो कुत्ता एक ब्राह्मण एक हस्ती सब कुछ एक ऐसा देखना चाहिए, सन्यासी का एक लक्षण है। और द्वंद्व नहीं होना चाहिए कुछ, लाभा लाभो जया जयो हर स्थिति में एक समान, और मन पे नियंत्रण, ये जब स्थिति आती है तो व्यक्ति सन्यासी योग्य होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि भी यहाँ बताते हैं, अपितु तब तक व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं। तो श्री प्रभुपाद ने अपने जीवन से बताया, उन्होंने भी एकदम सुंदर रूप से सन्यास धर्म का जो पालन किया, लेकिन कैसे किया, दैवीय वर्णाश्रम के अनुरूप अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। प्रभुपाद रिटायरमेंट एज में प्रभुपाद प्रचार के लिए गए, बहुत प्रयत्न किया प्रभुपाद ने, 40 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, प्रभुपाद ने प्रयत्न छोड़ा नहीं। फिर 69 साल में प्रभुपाद अमेरिका गए और प्रचार किया प्रभुपाद, उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था गुरु की जो है संतुष्टि, वो प्रभुपाद का एक ही लक्ष्य था गुरु कैसे संतुष्ट करो। एक बार तमाम कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद तो बोले कि प्रभुपाद एक सन्यासी को कितना प्रचार करने के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला कि मेरा अनुभव ऐसा है, प्रभुपाद ने बोले कि मैं जो हूँ मैं कभी प्योर नहीं होऊंगा और मैं कभी रिटायर नहीं ले सकता। ऐसा प्रभुपाद ने तमाम कृष्ण महाराज को कहा कि जब तक व्यक्ति प्योर नहीं होता तब तक रिटायर नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद ने कहा कि मैं प्योर नहीं हूँ इसलिए मैं रिटायर नहीं होता। उसके बाद तमाम कृष्ण महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा नहीं, प्रभुपाद बोले कि मैं प्योर नहीं हूँ और मैं रिटायर नहीं होऊंगा तो हमारा क्या। तो हम देखते इससे कि सन्यासी या कोई उच्च व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से निर्जन भजन के योग भी हो, योग्य भी होगा एक प्योर डिवोटी, लेकिन फिर वो फिर से जो है समाज में आकर वो समाज कल्याण करता है। जैसे भगवान बता रहे यदि आचार्य की श्रेष्ठ तत्त एवे तरो जना, चौथे अध्याय में अर्जुन बताते कि अर्जुन अगर आप पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी भी है, फिर भी उदाहरण की आप जो है युद्ध कीजिए। जैसे जनक महाराज उदाहरण के शुद्ध भक्त है, उदाहरण के राजा बने और एक उदाहरण दे रहे बाकी लोगों के लिए। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, प्रभुपाद के लिए क्या आवश्यकता है, भ्रमण करना प्रचार करना। प्रभुपाद तो पूरी तरह से प्योर डिवोटेड है, लेकिन उदाहरण स्थापन करे कि जो है प्रचार करना चाहिए, जो गुरु की आज्ञा है उसको पालन करना चाहिए। तो ये जो 3-4-5 श्लोक जो यहाँ पर दिए हैं, 5 मिनट है और 5 श्लोक है, इस 5 श्लोक के एक एक श्लोक पर हम थोड़ा एक प्रभुपाद जी का हम लोग कथा एक स्टोरी बताएंगे कि प्रभुपाद जी कैसे, जैसे पहले श्लोक में बताया प्रभुपाद जी सब जगह भ्रमण किया, प्रभुपाद जी ने सन्यासी को सब जगह हर स्थान में भ्रमण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने 12 साल में 14 बार पूरे भुवन का जो भ्रमण किया। आज जिनको एक्सपीरियंस है भ्रमण करने का, यहाँ एक दूसरे एक देश से दूसरे देश जाने का, उनको पता है कि जब हम कोई ट्रेन से जाते हैं या प्लेन से जाते हैं तो थक जाता है आदमी उस ट्रैवल से, उस प्रयास, उस प्रवास से, उस यात्रा से। और एक सिस्टम एक कहावत है जेट लैग बोलते हैं, प्लेन से जाएंगे आप एक देश से दूसरे देश में तो दोनों देश का टाइमिंग अलग होता है। आप सुबह यहाँ से निकले और पहुँचे नेक्स्ट डे अब एक पूरे 24 घंटे के बाद दूसरे देश में दूसरे दिन सुबह होता है, इसका मतलब आपकी रात के समय वो सुबह हो, तो थोड़ा समय लगता है बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जहाँ भी गए जेट लैग कुछ नहीं था प्रभुपाद का, जहाँ भी गए प्रभुपाद अपना घड़ी लेते थे, घड़ी का टाइम एडजस्ट करते थे और जैसे उनका शेड्यूल था फॉलो करते थे। उनके जो शिष्य थे, जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे, उनको परेशानी होती थी कि प्रभुपाद तो आराम भी नहीं करते, उनको आराम करने की आवश्यकता है, बीमार पड़ते थे, पड़ जाते थे। लेकिन प्रभुपाद भ्रमण जहाँ भी प्रभुपाद रहे 11 दिन में रहे, प्रभुपाद ने आलीशान मंदिरों की स्थापना की और उस मंदिर में सबसे अच्छा रूम प्रभुपाद को दिया गया। लेकिन प्रभुपाद आते थे 2 दिन रहते थे और चले जाते थे, कई एक जगह पर कई ज़्यादा रहे हैं। और प्रभुपाद ने बोला भी था कि मुझे नारद मुनि जी का शाप मिला है, नारद मुनि को शाप मिला था कि यक्ष प्रजापति ने दिया कि आप एक जगह कहीं रहेंगे नहीं, क्योंकि आप प्रचार करते हैं और लोगों को जो है ब्रह्मचारी बनाते हैं, धन्यासी बनाते हैं, तो इसलिए आप एक जगह नहीं रहेंगे, आपका घर ही नहीं होगा। तो यक्ष प्रजापति के लिए एक बड़ी चीज़ थी घर, दूसरे सबसे बड़ा भौतिक ऐश्वर्य घर है, इसलिए नारद मुनि को कहा कि आपको घर ही नहीं होगा। तो नारद मुनि खुश हो गया, अच्छी बात है, घर घर अच्छा है, घर नहीं तो अच्छा है। तो नारद मुनि का शाप प्रभुपाद ने बोला कि मुझे भी मिला है और हमारे सब शिष्यों के माता पिता ने मुझे शाप दिया है कि एक जगह पर रहेंगे नहीं हम, तो इसे मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। भले इतने बड़े बड़े मंदिर है और सबसे सबसे महत्वपूर्ण सबसे बेस्ट रूम मेरे लिए है, लेकिन मुझे 2 दिन से ज़्यादा मिलना नहीं। तो प्रभुपाद जैसे थे हर जगह भ्रमण कर रहे थे, प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, भले प्रभुपाद का जो सोसाइटी था इतने करोड़ों रुपए का जायदाद था, लेकिन प्रभुपाद अपने पास कुछ नहीं रहते थे। जैसे प्रभुपाद जो बोलते हैं प्रभुपाद अमेरिका में कितने रुपए लेके गए, प्रभुपाद 40 रुपया, उस समय $5 था, और प्रभुपाद ने उस 40 रुपये को रखा अपने पास, उसको उपयोग ही नहीं किया अमेरिका में। कृष्ण भगवान को इतने पूरी तरह से प्रभुपाद पूरी तरह से निर्भर थे कि उस 40 रुपये को प्रभुपाद ने उपयोग ही नहीं किया। और अमेरिका में रहे वो 1968 के आसपास प्रभुपाद की जब प्रभुपाद का जब शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा था तो प्रभुपाद जी अमेरिका से इंडिया आए ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट। और जब इंडिया में आए एयरपोर्ट में उतरे और जब टैक्सी में गए चिप्पीवाड़ा में शायद, उस समय प्रभुपाद ने 40 रुपये निकाला 1968 में 3 साल के बाद, और 40 रुपये का बिल प्रभुपाद ने टैक्सी वाले को दिया।
तो प्रभुपाद कुछ नहीं था, वो 40 रुपया था, 40 रुपये लेके गए, वो 40 रुपये का उपयोग उन्होंने बाद में इंडिया में कुछ प्रभुपाद के पास। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद बोले पे एक्चुअली एक जगह पे लीलामृत प्रभुपाद होते हैं, लीलामृत में आते बोले कि प्रभुपाद ने कहा भगवान कृष्ण ने मेरी 2 बार परीक्षा ली, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ मेरा ले लिया, प्रभुपाद ग्रस्त थे, उनका बिजनेस, उनके उनके परिवार वाले भी उनके अगेंस्ट हो गए, सब कुछ प्रभुपाद का भगवान ने लिया, भगवान ने मेरी परीक्षा ली। और दूसरी परीक्षा जो कब ली, जो भगवान ने सब कुछ मुझे दिया इस कौन में, सब कुछ इतना धन इतना ऐश्वर्य, तो वह परीक्षा, और प्रभुपाद दोनों बार जो है उत्तीर्ण हो गए। तो प्रभुपाद कुछ प्रभुपाद बस कुछ नहीं था, और एक यहाँ पर बताया कि जो सन्यासी है वो सबका जो है मित्र होता है, सुहृद होता है, सबके हित के लिए कल्याण के लिए वो कार्य करता है, सबको आदर देता है। प्रभुपाद के जीवन देखते हैं, सबको आदर देते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद का एक चीज था प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद बोलते थे कि मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। जैसे प्रभुपाद लंदन के एयरपोर्ट में जब उतरे प्रभुपाद, तो एक रिपोर्टर आके प्रभुपाद से पूछे कि स्वामी जी आप लंदन क्यों आए, चैलेंजिंग क्वेश्चन था वो कि लंदन क्यों आए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लोग जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, इंग्लिश वाले, वो लोग वो सब भारत में आए, सब कुछ लेके गए भारत का, कोहिनूर हीरा और बाकी सब लेके गए, लूट के धन लेके गए, सबसे महत्वपूर्ण धन भूल गए, वो लेके मैं आया हूँ, वो है कृष्णामृत, वो बन गया। प्रभुपाद किस लिए गए, देने गए। जब प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले प्रभुपाद अपने एक गुरु भाई से मिले, और गुरु भाई ने प्रभुपाद को बुलाया प्रसाद के लिए, और उनको बुलाया टेबल बैठे, टेबल बैठे, और आप चम्मच से खाइए प्रसाद। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं चम्मच से नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अमेरिका जा रहे हैं तो प्रचार करते समय आपको सब चेंज करना पड़ेगा, अभी हैबिट सब आपको चम्मच से खाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। प्रभुपाद नीचे बैठे प्लेट लेकर हाथ से खाने लगे, और प्रभुपाद बोले मैं वहाँ लेने जाने रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। और देखते हैं प्रभुपाद ने इतना सारा चीज़ दिया उधर, ऐसा कहा कि पाश्चात्य देश में लोगों को पता भी नहीं था कि हाथ से भी खाया जाता है कुछ चीज़, उनमें सिर्फ स्कूल कल्चर था, लेकिन पाश्चात्य देशों में लोगों को प्रभुपाद ने चेंज किया, हाथ से खाना चाहिए, स्पून से नहीं। और अगर पानी पीते हैं तो मुंह लगा के पानी पीते थे, प्रभुपाद ऊपर से पानी पियो पीते सिखाया। तो जो चीज़ लोगों को पता नहीं था, उनके जीवन में कभी किया नहीं उन्होंने, वो प्रभुपाद ने कराया। प्रभुपाद क्यों गए, देने गए थे, कुछ लेने नहीं गए थे। और इस तरह से प्रभुपाद ने सबको आदर था, सबसे जो है सबसे संबंध स्थापित किया। प्रभुपाद कभी कभी मायावादियों के प्रति बहुत उनकी चर्चा में मायावादियों को बहुत तोड़ते थे वो, उनके उनके फिलोसफी को, लेकिन अगर मायावादी मिलने आता प्रभुपाद को तो प्रभुपाद को बहुत आदर देते थे, प्रभुपाद उनको आदर सम्मान थे, लेकिन फिलोसफी में उनको नो आदर, नो रिस्पेक्ट। जब स्वयं आएंगे तो प्रभुपाद उनको बिठाएंगे, प्रसाद देंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, मतलब पूछेंगे कहाँ से आप, भारत से कहाँ से, बहुत आदर सबका, लेकिन फिलोसफी बोलेंगे तो तुरंत। तो आदर किस में, मायावादी को भी आदर दिया, लेकिन फिलोसफी में बिल्कुल आदर, नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे एक तीन मायावादी प्रभुपाद से मिलने आए अमेरिका में, और वो बोले, और उनकी प्रभुपाद ने बहुत उनका स्वागत किया जैसे, और स्वागत करने के बाद ये तीनों बोले कि स्वामी जी आपने ऐसा कुछ किया जो किसी ने किया नहीं अमेरिका, वो है कि अमेरिकन लोगों को आपने सब कुछ उड़ा दिया, उनका पूरी आदत है। अब तक जो भी यहाँ पर स्वामी आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और जो सिखाने आए उसको थोड़ा ढीला ढाला करके सिखाया, स्ट्रिक्ट कुछ बताया नहीं, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट बता के सब कुछ और स्पीड बोली बनाया आपने, आप महान है। तो प्रभुपाद ने क्या, प्रभुपाद बोले नहीं थैंक यू वेरी मच, बोले प्रभुपाद बोले थैंक यू वेरी मच, आप मुझे महान बोले। प्रभुपाद बोले आपका विश्वास है कि मैं महान हूँ, कि मैं अच्छा कार्य किया, इसका मतलब आपको जानते हैं कि मैं आके यहाँ पर मैंने कुछ कम नहीं किया, ऐसे ही सब कुछ जगह पर दिया है, इसका मतलब आप ये भी जानते हैं और आप इस पर विश्वास करते हैं कि आपने कुछ कम किया है और लोगों को कम दिया है। तो वाले प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बताया कि जो व्यक्ति लोगों को सही चीज़ बताता नहीं,
उसे क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं उसको, तो भगवान जी से टीचर नहीं उसको टीचर कहते हैं। तो चीटिंग करें, आप मुझे बोल रहे हैं अच्छा काम करो, लेकिन आप चीटिंग कर रहे हैं, सही चीज बता रहे हैं लोगों को, सब ढक के बता रहे हैं ताकि ज्यादा अनुयायी मिले। तो प्रभुपाद इस तरह से जो मायावादियों के प्रति भी जो आदर थे, आदर सत्कार उनका था, लेकिन फिलोसफी पे कभी उनका कॉम्प्रोमाइज नहीं था। और अंत में आज के श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं सन्यासी को सही ज्ञान क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए, अंधकार क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसके द्वारा समाज में प्रचार करना चाहिए। तो एक लास्ट कथा है कि प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो उनको मिलने एलन जिन्सबर्ग आए थे। तो एलन जिन्सबर्ग जब आए तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा, एलन जिन्सबर्ग बहुत बड़े संगीतकार थे, म्यूजिशियन, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि मैंने कल्कि अवतार के बारे में सुना है, आप बताएंगे वहाँ कल्कि अवतार के बारे में, कल्कि अवतार कैसे दिखता है? तो प्रभुपाद ने बताया कि कल्कि अवतार का मतलब वो घोड़े पे सवार होके आएंगे, सफ़ेद घोड़े पे, और हाथ में उनके तलवार होंगे। तो एलन जिन्सबर्ग ने पूछा कि उनका प्रचार क्या होगा उनका, प्रभुपाद ने प्रचार, नो प्रचार, नो प्रीचिंग, ओनली किलिंग, प्रचार कुछ नहीं होगा, बस मारना हो, काटना। तो एलन जिन्सबर्ग डर गया, ये कौन सा होता है, ये काटने आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके इस्कॉन के डिवोटी सब रहेंगे क्या उस समय कल्कि अवतार को देखने के लिए? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे डिवोटी सब भगवान चल जाएंगे। और प्रभुपाद ने उनको देखना बोला, लेकिन जो इस्कॉन में नहीं है उसे जरूर दर्शन करना पड़ेगा कल्कि अवतार का। तो एलन जी को पता चला कि सही ज्ञान क्या है अंधकार का। प्रभुपाद जी धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट्स चलो बैठे यहाँ के डिवोटी से चर्चा हम लोग राधा गोपी में भी करते हैं, यहाँ के डिवोटी से साधना बहुत परफेक्ट साधना है, यहाँ के ग्रस्त डिवोटी भी सुबह मोहल्लाती में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही एग्जाम, व्यवसाय करते करते सुबह 4:30 बजे आते हैं, और कोई कोई 2-3 डिवोटी यहाँ पर कम से कम मुझे मालूम है 64 माला रोज करते, प्रचार भी करते हैं, हाँ बड़ा स्टैंडर्ड है यहाँ पर। यहाँ के लोगों को संन्यास के बारे में बताना एक बहुत डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, प्रभु जी पूछा तो एक किसी का कोई प्रश्न है तो हमने एक पूछा, धन्यवाद, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय।
जय।